आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
राहुल प्रियंका ने बहुत मेहनत की, लेकिन सैम पित्रोदा पर भड़के रॉबर्ट वाड्रा, दो पीढ़ी की दी उलाहना। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा की नस्लवादी टिप्पणी पर भड़ास निकालते हुए कहा है कि उनके जैसे अत्यधिक पढ़े लिखे लोगों को बोलने से पहले कम से कम एक बार तो सोचना चाहिए था कि वह क्या कहने जा रहे हैं। उन्होंने इस पर घोर आश्चर्य जताया कि सैम पित्रोदा ने ऐसी विवादित टिप्पणी कैसे की। इसके साथ ही वाड्रा ने पित्रोदा के बयान को बकवास करार दिया है। समाचार एजेंसी एनी से बात करते हुए वाड्रा ने कहा, जब आप इस गांधी परिवार से जुड़े होते हैं तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कोई भी कदम उठाने से पहले आपको सोचना पड़ता है। सैम पित्रोदा ने जो कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने उपवास की है। इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कैसे कह सकता है? वह राजीव गांधी के बहुत करीबी थे। उन्हें थोड़ा और जिम्मेदार होना चाहिए था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके एक बयान की वजह से भाजपा को अनावश्यक तरीके से ऐसे मुद्दे को उठाने का मौका मिल गया है। वाड्रा ने कहा, आप किसी कमरे में सोफे पर बैठकर ही सब कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको सरकार की गलतियों के बारे में बात करनी है या कमियां बतानी है तो आपको क्षेत्र में जाना ही होगा। उन्होंने जो कुछ कहा वह पूरी तरह से बकवास है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने कल ही उन्हें लिखा था कि आपने जो कहा वह सब ठीक नहीं है। बता दे कि सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू कहा था, हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं। जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। उनकी इस टिप्पणी की पीएम मोदी समेत भाजपा के कई नेताओं ने घोर आलोचना की थी और उसे नस्लवादी और विभाजनकारी बताया था। कांग्रेस ने भी उस बयान से किनारा कर लिया था। केजरीवाल को पहली बार आरोपी बनाने जा रही एड, बढ़ सकती है मुश्किलें, क्या जमानत पर भी असर। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में शुक्रवार को चार्जशीट दायर कर सकता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि पहली बार केजरीवाल को आरोपी बनाया जाएगा। केजरीवाल के खिलाफ दायर होने जा रही चार्जशीट की टाइमिंग काफी अहम है। ईडी ऐसे समय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को आरोपी बनाने जा रही है जब शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत गिरफ्तारी को दी गई चुनौती पर भी सुनवाई करेगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ताजा चार्जशीट में केजरीवाल समेत कुछ अन्य लोगों को आरोपी बना सकती है। यह भी बताया गया है कि केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पेश किया जाएगा। इससे पहले भी कोर्ट में मौखिक रूप से ईडी के वकील केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और सरगना बता चुके हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया जाता है तो जल्द ही आम आदमी पार्टी को भी अभियुक्त बनाया जा सकता है, जिसके वह प्रमुख हैं। यह पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। हमारी पार्टी छोटी नहीं है, उन्होंने भांग खा रखी है, भड़के उद्धव। पवार के बयान पर बवाल। छोटी पार्टियों के कांग्रेस में विलय को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार की हालिया टिप्पणी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। शरद पवार ने भले ही खुले तौर पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके सहयोगी ही उन्हें जवाब दे रहे हैं। शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी छोटी नहीं है, जबकि उनके सहयोगी एवं राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि किसी अन्य दल में विलय करने का सवाल ही नहीं है। दरअसल एक अंग्रेजी दैनिक को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ अधिक निकटता से जुड़ेंगे या उसके साथ विलय के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। राउत ने कहा कि पवार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह अपने दल के बारे में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिन में पवार की टिप्पणी को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि वह पहले से ही कांग्रेस जैसा सोच रखने वाले हो गए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इससे पता चलता है कि खुद पवार के लिए अपनी पार्टी को संभाल पाना कितना मुश्किल है। पुणे जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे और फडणवीस ऐसे बोल रहे हैं जैसे उन्होंने भांग खा रखी हो। उन्होंने कहा, पवार साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय हो सकता है। कृपया मुझे बताएं, क्या शिवसेना एक छोटी पार्टी है? इस बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि वह भविष्य में सबसे पुरानी पार्टी के साथ क्षेत्रीय दलों के संभावित विलय या करीबी जुड़ाव पर राकांपा शरद चंद्र पवार अध्यक्ष शरद पवार की टिप्पणियों से सहमत है। पंजाब किंग्स या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कौन होगा आज IPL 2024 से बाहर? पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2024 का 58वां मैच आज यानी गुरुवार 9 मई को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। यह मुकाबला एक वर्चुअल नॉकआउट मुकाबला रहेगा। PBKS वर्सेस RCB मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहेगी, वहीं हारने वाली टीम का IPL 2024 में सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। बता दें, बुधवार को SRH वर्सेस LSG मुकाबले के बाद MI IPL 2024 से बाहर होने वाली पहली टीम बनी है। MI के बाहर होने से यह बात तो साफ हो गई है कि अब अधिकतम 12 अंकों तक पहुंचने वाली टीमें प्लेऑफ का टिकट हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसे में आज तलवार पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों पर लटकी है। IPL 2024 पॉइंट्स टेबल में फाफ डुप्लेसी की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सातवें तो पंजाब किंग्स आठवें पायदान पर है। दोनों टीमों ने अभी तक इस सीजन 11 से 11 मैच खेले हैं और बराबर 8 से 8 अंक है। RCB सिर्फ बेहतर नेट रन रेट की वजह से पंजाब से एक पायदान ऊपर है। बेंगलुरु का नेट रन रेट -0.049 का तो पंजाब किंग्स का -0.187 का है। दोनों टीमों को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बचे तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज करने की जरूरत है। ऐसे में आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए नॉकआउट जैसा रहेगा। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की यह IPL 2024 में दूसरी भिड़ंत है। इससे पहले जब M चिन्नास्वामी में यह दोनों टीमें भिड़ी थी तो RCB ने PBKS को 4 विकेट से पटकनी दी थी। बेंगलुरु की जीत के हीरो उस समय विराट कोहली रहे थे, जिन्होंने 77 रनों की शानदार पारी खेल टीम को सीजन की पहली जीत दिलाई थी। माफी नहीं मांगूंगा, सेना के आगे झुकने से इमरान खान का इनकार, बढ़ेंगी मुश्किलें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 9 मई के दंगों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि वह 2014 में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI द्वारा किए गए धरने की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। वह अदियाला जेल में 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में अदालती कार्यवाही के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इससे एक दिन पहले सैन्य शासन ने उनकी पार्टी से तब तक बातचीत करने से इनकार कर दिया था जब तक खान इन दंगों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते। डॉन अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक बुधवार को 19 करोड़ पाउंड के अल कादिर भ्रष्टाचार मामले में अदालत में पेश होने के बाद इमरान ने मीडिया कर्मियों से कहा कि वह 2014 में अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई द्वारा किए गए धरने की जांच का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। खबर के अनुसार जब उनसे पूछा गया कि क्या वह 9 मई को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए माफी मांगेंगे तो 71 वर्षीय इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हालांकि कहा कि वह उस समय हिरासत में थे और उन विरोध प्रदर्शनों से अनजान थे। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने पूर्व प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के सामने 9 मई को हुए दंगों की निंदा की थी। इमरान खान ने बताया कि उन्हें विरोध प्रदर्शनों के बारे में तब पता चला जब वह पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के सामने पेश हुए थे। खान पिछले साल अगस्त से जेल में बंद हैं और कोई भी बातचीत करने से पहले अराजकता की राजनीति बंद करने की मांग की थी।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।